हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब झलक इरिटेट होते हुए उसके हाथों में साड़ी देकर बोलती है, साड़ी पहन रही थी, अगर तुम्हें जल्दी है तो मुझे साड़ी पहना दो, नहीं तो मैं इसी तरह से बाहर चली जाऊंगी। अब ये सुनकर सिद्धार्थ झट से बोला था, नहीं, इस तरह से तुम बाहर नहीं जा सकती। और मन में सोचा, बाहर तो वो रणविजय भी होगा। फिर तुरंत उसे एहसास हुआ, पता नहीं क्यों मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, उसकी आंखों में कुछ तो अलग ही था। फिलहाल वो झटपट रूड वे में बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, तुम इस तरह से बाहर जाओगी, जानता हूँ तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब खुराना परिवार के साथ तुम्हारा नाम जुड़ चुका है, और जब तक ये नाम तुम्हारे साथ है, अपनी हद में रहना और कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना मत। ये बोलकर उसने साड़ी ली और झलक को पहनाने लगा था। उसे खुद साड़ी पहनाते हुए देखकर झलक सिहर उठी थी, क्योंकि साड़ी पहनाते वक्त सिद्धार्थ की उंगलियां कभी झलक की कमर को छू रही थीं तो कभी उसकी पीठ को। उसे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। वहीं इस वक्त सिद्धार्थ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जानबूझकर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल किए हुए था। वो झलक को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहता था कि उसकी खूबसूरती उस पर किस हद तक इफेक्ट कर रही है। फिलहाल उसका दिल कर रहा था कि वो घुटनों के बल बैठकर झलक की खूबसूरत कमर को बेदर्दी से चूम ले, लेकिन जैसे तैसे अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए उसने उसे साड़ी पहना दी और फिर बिना उसकी ओर देखे बोला था, अब जाओ और बाहर निकल जाओ। अब झलक जानती थी कि इस वक्त सिद्धार्थ की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, और वो हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर फटाफट वहां से बाहर निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और ठंडे पानी का शॉवर लेने लगा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर इस वक्त फट्टी की तरह तप रहा था और उसे शांति की ज़रूरत थी। खुद को शांत करने के बाद वो तैयार हुआ और बाहर आ गया। वहीं अनामिका और रणविजय इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अब डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक पकवान देखकर झलक जैसे ही बाहर आई तो उसकी लार पूरी तरह से टपकने लगी थी। वहीं रणविजय तुरंत झलक को देखकर बोला, अरे झलक जी, आइए कुछ खा लीजिए। लेकिन दादी ने तुरंत रणविजय को घूरते हुए कहा, नहीं बेटा, झलक कुछ नहीं खा सकती, उसका उपवास है, और जब तक वो अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेती तब तक वो कुछ नहीं खाएगी। ये सुनकर रणविजय ने कसकर अपना हाथ पीछे कर लिया था और उसने भी नाश्ता करना बंद कर दिया, और वैसे भी झलक को साड़ी में देखकर उसकी हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी। अनामिका ने तुरंत उठकर झलक को गले से लगाकर कहा था, अरे झलक, तुम तो कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही हो, रियली। अब ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए अनामिका को देखकर बोली थी, अगर बेटा जी तुम्हें साड़ी इतनी पसंद आई है तो फिक्र मत कर, हम तुम्हारे लिए भी एक दो साड़ियां खरीद देंगे। उसके बाद दादी रणविजय को देखकर बोली, अच्छा रणविजय बेटा, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ, वैसे भी अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें भी चलना चाहिए, आखिरकार तुम भी परिवार का हिस्सा हो। दादी ने जैसे रणविजय को भी पूजा में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया, रणविजय ने तुरंत कहा, अगर आपको लगता है कि मुझे पूजा में शामिल होना चाहिए तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब ये लाइन सिद्धार्थ ने भी सुन ली थी और वो रणविजय पर टिप्पणी करते हुए बोला था, देखो तुम्हारा आना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हारा कोई ज़रूरी काम है तो तुम अपना वो काम भी ख़त्म कर सकते हो। रणविजय ने कुछ नहीं कहा, बस दादी की ओर देखकर बोला था, मेरे लिए कोई भी काम दादी के हुक्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर दादी ने तुरंत सिद्धार्थ को देखकर कहा, देखा तुमने, ये बच्चा मेरी कितनी बातों का मान रखता है, और एक तू है जिसे अपनी अकर से ही फुर्सत नहीं है। फिलहाल दादी ने सबको तैयार होने के बाद कहा, अच्छा बेटा चलो फटाफट चलते हैं, वैसे भी मुझे पता है कि मेरी बच्ची को कितनी भूख लगती है और ज़्यादा देर वो भूखा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर झलक मुस्कुरा दी थी और वो मन में बोली कि दादी उसे कितना समझती हैं। फिलहाल जल्दी ही वो लोग एक साथ अपने आराध्य के मंदिर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा सिद्धार्थ खुराना के परिवार के निकलने से पहले ही मंदिर जा पहुंची थी और वहां जाकर वो लगातार कठिन परिक्रमा कर रही थी। अब जैसे ही सिद्धार्थ, झलक, अनामिका और रणविजय वहां पहुंचे, उनकी नज़र सबसे पहले सीधा आकांक्षा पर ही गई थी जो वहां पर परिक्रमा करती हुई दिखाई दे रही थी। आकांक्षा को देखकर अनामिका के हैरान होने का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो हूबहू झलक के जैसी ही थी, लेकिन रणविजय ने उसको रिएक्ट करने से मना कर दिया और बहुत ही कम शब्दों में झलक और आकांक्षा के बारे में उसे बता दिया था। वहीं अनामिका आंखें फाड़े अभी भी लगातार आकांक्षा को देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि ये दोनों इतनी सिमिलर कैसे हो सकती हैं, आखिर कैसे। फिलहाल अब आकांक्षा को वहां देखकर झलक के तनबदन में पूरी तरह से आग लग गई थी, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आकांक्षा इस तरह से यहां आ जाएगी, लेकिन आकांक्षा तो उस वक्त पूरी तरह अपनी परिक्रमा में व्यस्त थी। झलक को लगने लगा कि जरूर ये यहां कोई नाटक कर रही है परिक्रमा करने का, वरना इसके बस का कहां है ये सब, इस तरह से कोई भी हार्ट परिक्रमा पूरी कैसे कर सकती है। इसी सोच के चलते उसने तुरंत ही दादी को देखकर कड़वे लहजे में कहा, आपने देखा, ये जरूर यहाँ आकर कुछ ढोंग रच रही है, अभी इसने केवल दो से चार परिक्रमा ही की होंगी, हमें देखकर शुरू किया होगा, वरना सबको पता है ये कितनी संस्कारी है। जो कुछ भी झलक के मन में था उसने वही सब सबके सामने बोल दिया था, ये बात सभी सुन चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ थोड़ा चिढ़ गया और बोला था, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि वो पहले से ही यहाँ मौजूद हो। अब ये सुनकर झलक को बुरा लगा कि किस तरह से सिद्धार्थ आकांक्षा की साइड ले रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त पंडित की आवाज आई जो आकांक्षा की परिक्रमा करवा रहा था। वो बोला था, अरे बेटा तुम्हारी पूरी 102 परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब बस करो बेटा, अब तुम्हें और परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर तो झलक के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दादी भी थोड़ी हैरान रह गई थी। वहीं सिद्धार्थ अब गौर से झलक को देखने लगा था, मानो उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने आकांक्षा को कितना गलत समझा। झलक ने उसे ये भी कहा था कि वो दिखावा कर रही है, जबकि वो तो सचमुच यहाँ बहुत पहले से परिक्रमा कर रही थी और इसका मतलब साफ था कि अगर उसने 102 परिक्रमा पूरी की है तो वो एक तो नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे पहले ही यहाँ आई होगी। अब ये सुनकर झलक को वाकई अजीब लगा, क्योंकि आकांक्षा तो उन लोगों में से थी जो अपने आप को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देना चाहते थे, और इस तरह से वो परिक्रमा कर रही है ये बात उसे काफी अजीब लग रही थी। फिलहाल झलक ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वहीं लन विजय आकांक्षा को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ झलक को देखकर बोला था, दादी हमें यहाँ खड़े होकर आकांक्षा को देखने से बेहतर है कि हम जो पूजा करने आए हैं वो पूरी करें, और वैसे भी झलक जी कब तक भूखी रहेंगी। जैसे रणविजय ने इस तरह से झलक का ख्याल किया, सभी झलक की ओर देखने लगे, लेकिन सिद्धार्थ अंदर ही अंदर उलझा कर रह गया था। वो सोचने लगा था कि इस मामूली सी लड़की की इतनी फिक्र उसे क्यों हो रही है।
वहीं अनामिका ने गहरी नजरों से आकांक्षा को देखा और फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन जैसे ही अनामिका की नज़र मंदिर में बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही रणविजय के कानों में सरगोशी करते हुए बोली थी, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। अब ये सुनकर दादी हैरानी से बोल उठी,